सबके मना करने के बावजूद भी राधिका को ज्यादा खांसी आने की वजह से उन्होंने इशिका की दी हुई दवाई खा ली थी। दवाई गले में रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया और सीधे ही उसे निगल लिया था। राधिका ने अपनी आंखें बंद की, उन्हें सुकून महसूस हुआ। एक पल के लिए राधिका को लगा अब उन्हें खांसी नहीं आएगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खांसने लगी। राधिका का चेहरा उतर गया था। राधिका मन ही मन बोली, बच्ची है वो भी, और मैं भी न जाने कितनी उम्मीदें लगाकर बैठ गई, जबकि पिछले कई सालों में मैंने देश विदेश के सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो इशिका की ये दवाई क्या करेगी। राधिका हल्का खांसते हुए लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। पिछले 18 सालों से उन्हें क्रॉनिक न्यूरोटिक खांसी आ रही थी, इतनी दवाइयां लेने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। राधिका, राधिका उठो, तुम्हें क्या हो गया? राधिका प्लीज गेट अप। राधिका ने आंखें खोली तो उसके सामने आदर्श खड़ा था, जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, तो वहीं ज्यादा लाइटिंग से राधिका की आंखें अपने आप फिर से बंद होने लगी। राधिका ने फिर से आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, क्या टाइम हुआ है? प्लीज प्लीज वो लाइट बंद कर दो, ये मेरी आंखों में चुभ रही है। आदर्श ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये नेचुरल सनलाइट है राधिका, तुम्हें आदत नहीं है इसीलिए अजीब लग रहा है। वैसे इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम्हें इस वक्त तक अपनी दवाइयां लेनी होती हैं, वरना तुम्हारा ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा। राधिका हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने लंबे टाइम से सो रही थी। पिछले कई सालों से उसने मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नींद ली होगी, और आज वो उठी तब काफी फ्रेश भी महसूस कर रही थी। राधिका ने मन ही मन कहा, जरूर ये सब इशिका की दी हुई दवाई की वजह से हुआ होगा। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी श्रुति उसके पास आई और खुशी से बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम पिछले 9-10 घंटों से सो रही हो। डॉक्टर ने रात को जो खास सोने की दवाई दी थी वो काम कर गई। कौन सी दवाई? राधिका ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा। जवाब देने से पहले श्रुति ने आयशा की तरफ देखा। आयशा राधिका के पास आकर बैठी और मुस्कुराकर बोली, ये सब नक्श ने किया है। कल जब उसे पता चला कि आप ठीक से सो नहीं पाती, तो उसने एक स्पेशल ऑर्डर करके दवाई मंगवाई थी, जिसको हमने आपकी बाकी दवाइयां के बीच मिलाकर आपको दी थी। पहले आपको बता देते तो आप परेशान हो जाती। राधिका ने उसे कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी, सिर्फ एक सोने की दवाई से इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? नींद दिलाने वाली दवाई नींद दिला सकती है, पर मुझे सुबह सुबह काफी फ्रेश फील हो रहा है, गले में भी इतनी इचिंग नहीं हो रही है। बोलते हुए उसकी नज़र इशिका की लाई हुई दवाई पर पड़ी, जिस पर कोई लेबल तक नहीं लगा हुआ था। उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि वो इशिका की दवाई की फिर से जांच करेगी। अगर राधिका इस बारे में बाकी फैमिली को बताती तो सब फिर से इशिका पर सवाल उठने लगता, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज वो किसी को बिना बताए इशिका की दवाई छोड़कर नक्श की दवाई का इस्तेमाल करेगी, ताकि सच का पता चल जाए। राधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आदर्श की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। आदर्श ने गर्व भरे अंदाज में कहा, मेरा होने वाला दामाद तो है ही कमाल का। सुना है खास फ्लू के फैल जाने की वजह से जनरल वार्ड्स तक फुल हो गए थे, और वीआईपी वार्ड में तो रूम मिलना वैसे भी आसान नहीं है। नक्श ने ही बात करके रूम दिलवाया था। राधिका को इस बारे में अभी पता चला था कि नक्श ने उसके लिए कमरा अरेंज करवाया था। वो आयशा की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ सच में तुमने अपने लिए एक अच्छा लड़का चुना है। हर कोई नक्श की तारीफ कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने राधिका से कहा, मॉम नक्श हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम बताओ मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? राधिका ने पूछा। उसकी बात पर सहमति जताते हुए आदर्श ने कहा, हाँ उससे बात करना, अगर उसे किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली नक्श के मॉम डैड चाहते हैं कि वो राजवंश एम्पायर के न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बने, लेकिन अभी उसे सिर्फ एक टीम का हेड बनाया हुआ है। नक्श की उम्र कम है, ऊपर से सभी उसके सीनियर हैं और एक्सपीरियंस्ड भी। उनके रहते हुए नक्श का प्रमोशन नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर मर्चेंट उसकी टीम में शामिल हो जाए तो वो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बन सकता है, आयशा ने उन सबको बताया। आयशा ने राधिका के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर संकोच के भाव थे। वो कभी किसी की मदद लेना पसंद नहीं करती थी, उनके उसूल अलग थे। वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी, शायद तभी इशिका ने उनके जैसे बनना चाहा। आयशा ने राधिका को फंसा दिया था। राधिका कुछ पल रुककर थोड़ा हिचकिचाकर बोली, ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हम उन्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मॉम, आयशा ने खुश होते हुए कहा और राधिका का हाथ पकड़ लिया। वो मन ही मन बोली, डॉक्टर मर्चेंट ने आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, तो इसके लिए भी नहीं करेंगे। बस आप एक बार उन्हें बोलकर तो देखो। कहा था ना नक्श, मैं कर लूंगी ये। सबके कहने पर राधिका ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर मर्चेंट को मैसेज किया, डॉक्टर मर्चेंट क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, मुझे आपका एक एहसान चाहिए। दूसरी तरफ इशिका ने जब राधिका का मैसेज पढ़ा तब वो वसुधा और नर्स के साथ वसुधा को वॉक करवाने के लिए लेकर गई थी। इशिका बस उनके साथ लौट ही रही थी लेकिन जब उसने राधिका का मैसेज पढ़ा तो वो परेशान हो गई। इशिका मन ही मन बोली, मिसेस सिंघानिया ठीक तो होंगी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात वाली दवाई लेने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी हो। ओ माय गॉड, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उस दवाई के अभी एक और टेस्ट रिजल्ट आने बाकी थे, मैंने जल्दबाजी दिखा दी, लेकिन आंटी की तबीयत भी खराब हो रही थी। प्लीज गॉड, उनके साथ कुछ बुरा मत करना। इशिका के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने उसी वक्त राधिका से मिलने का सोचा। इशिका ने अपने साथ आए नर्सिंग स्टाफ से कहा, आप प्लीज ऐसा कीजिए, दादी को लेकर उनके रूम में जाइए, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। जाने से पहले इशिका ने वसुधा को तरफ देखा। कहाँ जा रही हो बहू, वसुधा ने पूछा। इशिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो जल्दबाजी में बोली, दादी मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, बस कुछ देर में आ जाऊंगी। वसुधा ने मुस्कुराकर उसे जाने के लिए हाँ कह दिया था। वो अपनी नर्स के साथ कमरे में पहुंची तो वहां अभिमन्यु काम में लगा हुआ था। उसकी नजर वसुधा पर गई और उसके बाद में पीछे खड़े नर्सिंग स्टाफ पर। अभिमन्यु ने हल्का सा झुककर इशिका को देखने की कोशिश की पर वो वहां नहीं थी। अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ और वसुधा से पूछा, मिस सिंघानिया कहाँ है दादी? वो अपनी माँ से मिलने गई है, वसुधा ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, क्या मिसेस सिंघानिया की तबीयत फिर से खराब हो गई है जो वो वहां गई है? उसका मन अचानक बेचैन हो गया था। मुझे पता नहीं है, पर हो भी सकता है। तुम ऐसा करो, उसके पीछे जाओ और जाकर पता लगाओ। मेरी बहू को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए लड़के, सुना तुमने? वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती दूसरी तरफ करते हुए कहा। न जाने क्यों अभिमन्यु को उस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला। उसके निकलने के साथ ही पृथ्वी भी उसके पीछे पीछे आने लगा। अभिमन्यु उस तरफ जाते हुए धीरे से बड़बड़ाकर बोला, ये लड़की मेरी सुनती क्यों नहीं है? क्या जरूरत थी वहां जाने की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो लोग उसे बात बात पर इंसल्ट करते हैं।
वहीं इशिका जल्दी से राधिका के कमरे की तरफ गई लेकिन उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। उसने देखा मालविका भी वहीं पर थी और नक्श भी आया हुआ था। वो सब हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इशिका उनके बीच जबरदस्ती घुसाई हो। इशिका को देखते ही उन सब की हंसी रुक गई थी। इशिका वहां रुकना नहीं चाहती थी, वो बस राधिका को देखने के लिए आई थी। उसने देखा राधिका आराम से वहां लेटी हुई थी तो इशिका वापस जाने लगी। राधिका उसे रोकना चाहती थी लेकिन इतने लोगों के बीच उसने इशिका को रोकना सही नहीं समझा। कोई इशिका को कुछ न बोले लेकिन मालविका कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए तेज आवाज में बोली, ओ तो राजकुमारी के कदम यहां तक पड़ गए। क्या हमारी फैमिली में तुम्हें प्यार नहीं मिला जो तुम एक अनजान औरत के साथ खुल मिल रही हो? इशिका ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा और कुछ नहीं बोली। वो वहां से जाने लगी लेकिन मालविका ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मालविका उसे सुनाते हुए बोली, मैंने सुना है आजकल तुम वसुधा राजवंश के आगे पीछे ही रहती हो, उनका हर छोटा बड़ा काम कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी सेवा करने के बाद वो तुम्हारी शादी अपने पोते से करवा देगी? अफसोस कि वो पहले से शादीशुदा है और तुम उनके लिए एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं हो। आंटी ऐसा मत बोलिए, बड़ी दादी इशिका को बहुत पसंद करती है, आयशा ने इशिका का मजाक बनाने के लिए कहा। मालविका हंसी और बोली, पसंद? और वो भला इसे क्यों पसंद करेगी? अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे मिस्टर नक्श राजवंश ने कल तुम्हारे लिए किया। यहाँ आसानी से कमरा नहीं मिलता, लोग पहले से अपॉइंटमेंट लेकर रखते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए रूम अरेंज करवा दिया। ऊपर से स्पेशल डॉक्टर भी बाहर से बुलाया था। जो शख्स प्यार करता है वो ऐसी छोटी मोटी चीजें करता रहता है। मौके का फायदा उठाते हुए नक्श ने मुस्कुराकर इशिका की तरफ देखकर कहा, आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? चाचू को इस बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो वो राधिका आंटी के लिए जरूर कुछ करते, वैसे भी वो बहुत बिजी रहते हैं। खैर उन्होंने ना सही लेकिन मैंने उनके लिए रूम अरेंज करवा दिया और ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मालविका ने नक्श से कहा, आपकी इस छोटी सी हेल्प ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। आदर्श जी को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है और कल वो आपके इस जेस्चर्स में काफी इम्प्रेस हुए थे। इशिका इन सब में चुपचाप खड़ी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर रखा था। वो कुछ भी कहकर या उनका मुंह बंद करवाकर राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। इशिका भले ही चुप रहे या कुछ न कहे लेकिन रूम के बाहर कोई और भी खड़ा था जो सारी बातें सुन रहा था। वो अभिमन्यु था। गुस्से से उसका चेहरा सर्द हो गया था। उसके पीछे पृथ्वी खड़ा था। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? पृथ्वी मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया। उसने इधर उधर देखा तो वहीं आसपास एक वास में फ्रेश फ्लावर्स लगाए गए थे। पृथ्वी ने उन्हें निकाला और कमरे के अंदर गया। हेलो, पृथ्वी ने अंदर जाकर उन सबसे कहा, मैं पृथ्वी चौहान, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश का प्राइवेट मैनेजर और सिक्योरिटी हेड हूँ। मैं मिसेज राधिका सिंघानिया से उनकी हेल्थ के बारे में पूछने आया हूँ। सर ने मुझे यहाँ भेजा है। वो बस जानना चाहते हैं कि मिसेज सिंघानिया कंफर्टेबल है ना। उन्हें उस रूम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जो कल मिस्टर अभिमन्यु राजवंश ने उनके लिए अवेलेबल करवाया था? पृथ्वी की बात सुनकर सब कोई हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। इशिका ने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। वो मुस्कुराना चाहती थी पर फिलहाल ना तो वक्त सही ना था और ना ही माहौल। भाई, अभिमन्यु उन लोगों में से नहीं है जिसने कुछ किया है और एहसान नहीं जताएगा। वो नहीं भी जताता, पर जिस तरह से नक्श सारा क्रेडिट लेने पर तुला था और सब इशिका की इंसल्ट कर रहे थे, अभिमन्यु के पास और कोई रास्ता नहीं था। देखते हैं अब नक्श का क्या हाल होता है। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर बस समीक्षा कर देना।